آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, پھر بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے
ہیں. فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پروگرام ہے میری کہانی, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. پروڈیوسر ہمارے انجن ہیرل گل ہیں اور ہمارے انجینئر ہیں ڈین کرافٹن. آج بھارت کا یوم آزادی ہے اور کل پاکستان نے اپنا یوم آزادی منایا. ہماری طرف سے دونوں ملکوں میں سننے والوں کو ان کے یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد. جب بھی ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم ان شہیدوں کو یاد کرنا چاہیے, ان لوگوں کو جنہوں نے اس آزادی کے لیے قربانیاں دیں اور جس کے نتیجے میں 1947 میں وجود میں آئے یہ دونوں ملک اور بھارت اور پاکستان کے نام سے. تو اس آزادی میں جن لوگوں کا نام بار بار سامنے آتا ہے اس میں ایک نام جو ہے اسے ایک شعر منسوب کیا جاتا ہے, اور وہ شعر کیا ہے لیجیے ہم آپ کو فلم شہید میں وہ گانے کی شکل میں ہے تو وہ سنواتے ہیں آپ کو اور پھر ہم آگے بات کریں گے.
سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے.
سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. کئی دفعہ یہ شعر منسوب کیا جاتا ہے رام پرشاد بسمل صاحب سے, اور کیونکہ وہ اس شعر کو پڑھتے تھے اور وہ جنگ آزادی میں جن لوگوں نے اپنی جانیں دی ان میں شامل تھے. یہ ایک مشہور واقعہ ہے. پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ شیوناد شاہ صاحب جب تھے, جو آج بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو انہوں نے ذکر کیا تھا کاکوری میں ٹرین پر ایک ڈکیتی کا جو کہ جنگ آزادی کے انہی سرفروشوں نے کی تھی اور جس کے نتیجے میں پھر بعد میں پکڑے گئے. مقصد یہ تھا کہ سرکار کا خزانہ لوٹ کر اس سے ہتھیار خریدے جائیں اور آزادی کی جنگ لڑی جائے. تو اس میں ہمیں جہاں صاحب نے بتایا تھا پچھلی دفعہ ایک تو اشفاق علی خان صاحب کے بارے میں جو کہ اس ڈکیتی میں شامل تھے, بلکہ اس جدوجہد میں کہنا چاہیے, اور رام پرساد بسمل صاحب کا. تو ہم نے بات کی ہے ان کے پوتے سے اشفاق صاحب کے, ان کا نام بھی وہی ہے اشفاق اللہ خان, اور اسی طرح ان کے بھتیجے سے بات کی ہے ہم نے برجندر سنگھ صاحب سے. تو پہلے میں جہاں صاحب سے کچھ بات کروں گی. جہاں صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی میری آواز آ رہی ہے. اور پیچھے آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ پچھلے بار جو ہم لوگوں نے بات چیت کیا تھا اس میں آواز بہت زیادہ بہت کم تھا, تو اس کو تھوڑا سا دھیان رکھا جائے تاکہ لوگوں کو عوام کو سننے کا موقع ملے.
نہیں آپ کو اپنے پاس آپ کو آواز کم لگ رہی ہوگی. اصل میں ہمارا پروگرام دو جگہ جاتا ہے, ایک تو فیس بک پر جاتا ہے اور ایک ہمارا ریگولر پروگرام ہوتا ہے جو ریڈیو پر جاتا ہے. آپ اس کی پریشان نہ ہو, فیس بک پر جو چیز جاتی ہے وہ ہمارا ریڈیو کا فیس بک کا اپنی ہے اور ریڈیو کی اپنی ہے. تو ریڈیو پہ جو ہمارا پروگرام ہے میں آپ کو بتا دوں, آپ سن لیجیے, کہ وہ موجود ہوتا ہے ہمارے ویب سائٹ پہ, لوگ سن سکتے ہیں.
ابھی ابھی آپ نے جو بتایا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے,
جی
یہ بسمل عظیم الوادی صاحب کا شعر ہے.
جی ہاں میں نے یہ عرض کیا کہ ان کی سے منسوب کیا جاتا ہے پرساد صاحب سے, لیکن یہ ان کا ہے نہیں, لیکن ان کا پسندیدہ شعر تھا.
بہت پسندیدہ شعر ہے, اور چونکہ جو اس سمے کا وہ جو حالات تھا اس حالات میں جو بھی کرانتیکاری تھے جو بھی لوگ اس سمے دیش کی آزادی کے لیے کام کر رہے تھے, اپنا پورا سارا چیز دیش کے لیے چھوڑ دیا تھا, اس میں یہ جو بسم اللہ عظیم وادی صاحب کا یہ شعر تھا وہ بہت ہی اپنے آپ میں ایک عجوبہ تھا, ایک کرانتیکاریوں کے دل میں ان کے شریر میں جو خون کو اور زیادہ گرم اور جو جی وہ لانے کا تھا.
بالکل بالکل بچیا صاحب, ہم اب کیونکہ آج ہمارے پاس وقت کم ہے, دو کہانیاں ہیں تو آپ سے, بلکہ کیونکہ خاص طور پہ میں آپ سے بسمل صاحب کی کہانی آپ سے سنوں گی زیادہ, کیونکہ ان کے گو کے آپ نے جو مجھے بتایا کانٹیکٹ دیا برجندر سنگھ صاحب کا, ان کو کیونکہ زبان تھوڑی سی ان کی مشکل تھی سمجھنی.
جی ہاں جی ہاں, تو ادھک عمر کے ہو گئے.
بالکل, تو آپ جی جی ابھی ابھی ہم پہلے شروع کر رہے ہیں اشفاق علی خان صاحب سے, اشفاق اللہ خان صاحب سے. جی 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 ہم ان سے شروع کر رہے ہیں, ان کے انہی کی کہانی ہے اور ان کے جو پڑ پوتے ہیں ان کی زبانی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, لیکن پہلے ہم کہانی سنتے ہیں
اور پھر ہم بھیج دیا ہوں ابھی ان کا ویڈیو.
جی ہاں, لیکن ذرا دیر ہو گئی بھیجنے میں آپ کو, اس سے پہلے ہمارا ذرا پروگرام اب شروع ہو گیا, تو چلیے ہم سنتے ہیں کہانی اشفاق اللہ خان صاحب کی.
مجھے اشفاق اللہ خان کہتے ہیں, میں ان کا گرینڈ سن ہوں, پوتا ہوں شہید اشفاق اللہ خان کا, اور میں اسی جگہ شاہجہاں پور اتر پردیش انڈیا میں جو ان کا آبائی مکان ہے جس میں شہید اشفاق اللہ خان کی پیدائش ہوئی تھی وہیں میں رہتا ہوں, اور میرا نام اشفاق اللہ خان ان کی وصیت کے مطابق ہے. جب ہماری فیملی ان سے پھانسی جب کا حکم ہو چکا تھا اور ان سے ملنے گئی تھی, تب انہوں نے خواہش ظاہر کی اپنے بڑے بھائی ریاست اللہ خان صاحب سے کہ میرے بعد میرے گھر میں کسی کا نام اشفاق اللہ رکھا جائے. جب میرے چچا 11 سال کی عمر تھی اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, میرے والد صاحب کی پیدائش ہوئی. لیکن میرے والد صاحب کو وہ نام اس لیے نہیں ملا کہ اشفاق اللہ خان کی والدہ گھر میں تھی, ان کی ماں گھر میں تھی, تو وہ نام ان کو نہیں مل سکا کہ بار بار وہ نام سے ان کو تکلیف ہوگی. اس لیے میں خوش قسمت ہوں کہ ان کے وصیت کے مطابق میرا نام بھی اشفاق اللہ رکھا گیا. اشفاق اللہ خان صاحب کے جو والد تھے وہ سرکاری محکمے میں پولیس انسپیکٹر تھے, اس وقت ان کے نانا ڈپٹی ہوا کرتے تھے, اور ان کی والدہ ڈپٹی کی بیٹی تھیں اور وہ کافی تعلیم یافتہ تھیں. اس وقت ان کے پاس اخبار آتا تھا اور گھر کا ماحول بھی اور ذمہ داری کا بھی ماحول تھا گھر میں, اور کافی خوشحال پریوار تھا, فیملی تھی. تو اس کے بعد مشن, یہ جو لوگ یہاں پڑھتے تھے پھر مشن اسکول میں داخلہ لیا, وہیں مشن اسکول میں 7th اور 8th کلاس کے اسٹوڈنٹ جب تھے تبھی سے حب وطنی اور جنگ آزادی کے لیے جو لڑائی تھی وہ شروع ہو گئی تھی, اور ان میں جذبہ تھا, اور وہ پنڈت رام پرساد بسمل اور ان لوگوں کے قریب آئے, اور اس کے بعد اس لڑائی میں انہوں نے حصہ لیا. رام پرساد بسمل اشفاق اللہ خان کے بڑے بھائی کے کلاس فیلو تھے, سینئر تھے وہ, لیکن اشفاق اللہ خان نے ان سے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس لڑائی میں ہم لوگ سب ایک سنگٹھن میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو پنڈت رام پرساد بسمل کو اس وقت تو یقین نہیں ہوا, کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ ان کے گھر میں تو زیادہ تر لوگ آفیسرز ہیں, یا اپنے ان کے گھر میں سرکاری محکمے کے لوگ ہیں, ذمہ داری ہے تو شاید یہ, لیکن حب وطنی کے اس جذبے کو وہ روک نہیں پائے, اور آخر کار وہ دوستی پھر یقین میں بدل گئی. ہاں, وہ اس کے بعد کئی ایسے مسئلے پیش آئے کہ اس سنگٹھن کو ان سے برٹش حکومت سے لڑنے کے لیے ویپنس کی بھی ضرورت تھی, اور کس طریقے سے وہ ہتھیار اس طریقے سے استعمال کرتے یہ وہ, تو سب نے ایک پلان بنایا کہ کاکوری کیس جو 9 اگست 1925 کو ہوا, کہ اس برٹش حکومت کا جو ہے خزانہ اس کو 9 اگست 1925 کو یہ پلان کر کے کاکوری ایکشن کیا گیا, اور کاکوری ایکشن میں جو تھے وہ 7-8 لوگ تھے, بہت سے لوگوں کو اس میں 10 سال کی سزائیں ہوئیں. یہ 9 اگست 1925 کو یہ وہاں پر کاکوری جو لکھنؤ کے پاس ہے وہاں یہ ایکشن کیا گیا. وہ ایکشن یہ تھا کہ ہم برٹش حکومت کو ہلا دیں گے ان کا خزانہ لے کر, اور جتنے بھی ویپنس کی اور سنگٹھن کو فائنینشلی ضرورتیں ہیں اس سنگٹھن کے پاس کہ کس طریقے سے ہمیں اس ویپنس خریدنا ہے, اور وہ اس وقت ماؤزر پسٹل خریدے گئے, اور رابری وہاں پر وہ کیس کاکوری میں اس خزانے کو ٹرین کو روکا گیا, اور ٹرین ایکشن میں 10 لوگ تھے, یہ لوگ اپنی ریوالور لے کر نیچے گھوم رہے تھے کہ ہمیں کسی سے مطلب نہیں ہے, کسی پیسنجر سے مطلب نہیں ہے, اور ہم اس برٹش حکومت کو للکار رہے ہیں, اس کا خزانہ ہمیں لینا ہے. तभी ये काकू रिएक्शन वहां पे किया गया। उसके बाद वहां तिजोरी से उनका वो पैसा लेकर और वेपन्स लेकर जो आ रहे थे माउजर पिस्टल, और वहां से ये लोग निकल गए। हाँ, इसी केस में फिर गिरफ्तारियां शुरू हो गई और अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी। अशफाकुल्ला खां के वहां भी बराबर, यहाँ शाहजहांपुर में और आसपास ब्रिटिश हुकूमत को एक बहुत बड़ी चुनौती उस वक्त थी, और ये ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरीके से इन लोग को, अशफाकुल्ला खां बाद में दिल्ली में चितली खबर पे पकड़े गए और अलग अलग लोग, पहले बिस्मिल जी पकड़े गए, फिर ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, और फिर अलग अलग जेलों में इन पर मुकदमा चला। देश के उस, ये लोग जब जाते थे तो वहां पर पूरी तरीके से हिंदुस्तान इस मुल्क की नारेबाजी वहां अदालत में भी करते थे कि चलो चलो यारो तुम्हें रंगरेटर दिखाएं, जहां पर टीम ओजर कर रहे हैं, तमाशा दिखा रहे हैं, और वहां शायरी भी करते। और आखिरकार ये इस केस में काकू रिएक्शन ने इन लोग को, चार लोगों को फांसी का हुक्म हुआ, जिसमें अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी अलग अलग जेलों में रहे। 22 अक्टूबर 1900 को उनकी पैदाइश हुई थी और 19 दिसंबर 1927 को उनकी फांसी हुई थी, और 27 साल की करीब उम्र रही होगी। उससे बड़े राम प्रसाद बिस्मिल थे, करीब करीब लगभग सब एक ही उम्र के सब नौजवान थे। अशफाकुल्ला खां ने बहुत कुछ लिखा भी है, अपनी डायरी में भी लिखा है, अपनी वालदा को उन्होंने जेल से खत लिखा, वो बड़ा समझाने और सब्र के लिए खत था कि ऐश मेरी दुखिया माँ, मेरा वक्त बहुत करीब आ गया है, मैं अब आप सबको अलविदा कह के चला जाऊंगा, लेकिन आप एक तालीम याफ्ता और एक पढ़ी लिखी माँ हैं, मैंने तो सुना था कि जब अल्लाह ताला ने मुझे आपकी गोद में दिया था, उस जज्बे को, वो इतना ज्यादा जज्बा था कि वो उसमें बहुत आगे बढ़ते चले गए। और यही हुआ बाद में, तो ब्रिटिश हुकूमत ने उनसे ये कोशिश भी जाहिर की। एक मजिस्ट्रेट सद्दक हुसैन साहब थे, उनको फैजाबाद जेल भेजा गया कि आप सरकारी गवाह बन सकते हैं, आपकी फांसी रुक सकती है और आप सरकारी गवाह बन जाइए, लेकिन अशफाकुल्ला ने कहा कि नहीं, और हमें सरकारी गवाह नहीं बनना है और हमें इसे आखिर तक अंजाम देना है। और यही हुआ कि उन्होंने किसी की बात उस वक्त नहीं मानी, और जाहिर बात है कि घर वालों की तो सपोर्ट रही और घर वाले बराबर उनसे रابطہ कायम रहा, जेल में भी और उसके बाद भी। उसके बाद जाहिर बात है कि ब्रिटिश हुकूमत ने काफी परेशान किया, जितने भी प्रॉपर्टी थी वो सब जब्त की, और उसके बाद अलग अलग, अशफाकुल्ला खां के वालिद को अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया था। उसके बाद घर पर बराबर पुलिस और ये सब तंग करने का काम शुरू हो गया। हमारी जो फूफी जान थी वो करीब 3-4 साल की रही होंगी जब ब्रिटिश हुकूमत उनके वहाँ आई और उन्हें पलंग से उठाकर खड़ा कर दिया, वो बताया करती थी। और एक बार तो अशफाकुल्ला खां यहीं थे, रियासतुल्ला खां बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं है अशफाकुल्ला खां, वो अपनी नमाज अदा कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अशफाकुल्ला खां के बड़े भाई ने कि नहीं मैं पर्दा करा लूं, तो पुराने मकानों में बड़े मकान थे और बड़े मकान से वो अशफाकुल्ला खां निकल कर एक बार यहाँ से चले गए थे। तो जाहिर बात है कि परेशानी का जबरदस्त दौर था और ब्रिटिश हुकूमत से वो जंग थी, तो परेशान तो किया ही गया था परिवार। और उसके बाद जेल में शहीद अशफाकुल्ला खां थे, बराबर उनके बड़े भाई रियासतुल्ला खां और काफी घर के लोग बराबर मिलते रहे, और मिलके फिर हजेला साहब वकील थे, उसमें उनको वकील किया गया और वो मुकदमे की कार्रवाई जब भी चलती रही। तो उस दौरान लोगों का, फैमिली के लोगों का मिलना फैजाबाद जेल में अक्सर हो जाता था, और वहां से उन्होंने काफी कुछ लिखा भी, जो उन्होंने डायरी लिखी वो डायरी अशफाकुल्ला खां की मेरे पास है। उनके पास जो कुरान पाक रहता था और उसकी तिलावत करते थे, उस पर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो उनके पास था। और वहाँ जो थे वो काफ़ी, उन्होंने अपना वक्त जेल में गुजारा, और फिर उन, जाहिर बात है कि फांसी का हुक्म हुआ, और फांसी के हुक्म के बाद उन्होंने उसको बाखूबी उस तरीके से निभाया। लिखा, एक शेर लिखा उन्होंने कि तंग आकर हम भी उनके जुल्म बेदाद से, चल दिए सूहे आदम जिंदाने फैजाबाद से। तो शायरी भी करते थे, बहुत कुछ उस पर लिखा उन्होंने। मौत और जिंदगी, दुनिया का एक तमाशा, और ये सब उन्होंने पूरी निडर होकर पूरी इस सब सिचुएशन को फेस किया, और हुब्बे वतनी का जो जज्बा था उसको बराबर कायम रखा, और यहाँ जो एक तहरीक थी उस तहरीक को भी उन्होंने, जो अशफाकुल्ला खान और बिस्मिल जी की दोस्ती थी, हमारे खानदान के लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की अपने वकील से अजीला साहब से कि अजीला साहब अगर मेरी ख्वाहिश है, मेरे मुकदमा भी आपने इतने दिन लड़ा, मुझे मारता था कि मुझे फांसी होगी, लेकिन मेरी खुशी ये होती कि आप देखिए आके कि आपका ये मुवक्किल कितने हसरत और खुशी के साथ हाथी के कंधे को चूमता है। एक उन्होंने खत लिखा अपनी एक सचिन नाथ बख्शी, उनके दोस्त थे जो काकोरी एक्शन में जिनको 10 साल की सजा हुई थी, तो उनको खत ये लिखा 16 तारीख को, 16 दिसंबर 1927 को फांसी होना थी, 19 को ये खत लिखा। वो मेरे पास खत है कि वो मेरी, मुझे पता है कि मुझे अब 19 तारीख को अलविदा आप सबसे कहना है, लेकिन ये खत आपको जब मिलेगा तो शायद मेरी डेड बॉडी, मेरी अगर फैमिली को मिली तो ये मेरी बॉडी जो है वो लखनऊ स्टेशन तक पहुंच चुकी होगी। नहीं, अशफाकुल्ला खान की शादी के लिए बहुत पहले घर वालों ने कहा, लेकिन उन्हें पता था कि जंग आज़ादी की लड़ाई में हमारा क्या होगा, और उन्होंने शादी से डिनाई कर दिया। हाँ, ये जरूर हुआ कि उन्होंने जब वहाँ जेल में आखिरी दिन में पूछते हैं कि भाई आपकी ख्वाहिश और क्या है, आपको क्या क्या चाहिए, तो कुरान शरीफ उनके पास था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे एक कुर्ता चाहिए है और कढ़ा हुआ एक अच्छा कुर्ता चाहिए है, और मुझे अच्छा इत्र चाहिए है जो फैजाबाद से आप कहीं मंगाइए। तो ये सब सामान वहाँ के जेलर ने वहाँ के मुहैया कराया, और जिस दिन फांसी थी उस दिन सुबह को उन्होंने वही कुर्ता और वही पैजामा और वही इत्र लगाया, और ये कहा सुना जाता है कि जब वो फांसी पे जब जाना होता है तो थोड़ी स्लिप होता है, चढ़ते हैं, तो लब्बैक कहते हुए वो फांसी के फंदे पर गए, और उन्होंने ये कहा कि मेरे घर वाले बहुत मुझसे शादी के लिए कहते थे, लेकिन आज मैं पूरी सजावट के साथ दूल्हा बन गया हूँ, और यही मेरा मेरी फांसी घर को, मैं उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा कि आज यही मेरी दुल्हन है, इसी से मेरी शादी हो रही। और जब उनसे एक आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी तो उन्होंने एक शेर कहा था कि कुछ आरजू नहीं है, कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। और उसके बाद वहां बहुत मुश्किल के साथ ये ऑर्डर हो गया था कि उनकी बॉडी मिल जाएगी, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत बॉडी देते हुए इसलिए डर रही थी कि हंगामा होगा या कोई, लेकिन लखनऊ स्टेशन पर जब डेड बॉडी आई तो क्योंकि डेड बॉडी तो शाहजहांपुर आना थी फैजाबाद से, जो 180 किलोमीटर फैजाबाद शाहजहांपुर से लखनऊ है, लखनऊ से फैजाबाद है 180, तो वो वहां से लखनऊ जब आई तो सुना जाता है कि 40,000 लोग ब्रिटिश हुकूमत की सख्ती के बावजूद भी स्टेशन पर देखने आ गए थे। फिर वो यहाँ डेड बॉडी जब आई तो हम खानदान, अहले खानदान ने उनके जो अपना निजी खानदान का कब्रिस्तान है उसी में दफन किया, और आज उनकी मज़ार शाहजहांपुर में जो फदन खैर के नाम से खानदान है, क्योंकि अशफाकुल्ला खान तो का मकान भी 300 साल का यहाँ पर है, उसी खानदान के कब्रिस्तान में यहाँ उनको दफन किया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urdu.voa.com।
तो सामिन, ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से। हमारा यौम आज़ादी जो भारत और पाकिस्तान दोनों का है, आज 15 अगस्त भारत का और 14 अगस्त पाकिस्तान का, उसके हवाले से हम कहानियाँ सुनवा रहे हैं आपको जंग आज़ादी की। पिछले हफ्ते भी आपने कहानी सुनी थी उधम सिंह की, और आज दो कहानियाँ हैं हमारे प्रोग्राम में। एक तो अशफाकुल्ला खान साहब की कहानी जो काकोरी के ट्रेन की रॉबरी से मुतालिक है, اور انہی کے ساتھ رام پرشاد بسمل صاحب کی ہمارے ساتھ موجود ہیں دو مہمان اس وقت. آپ کی ابھی جھا صاحب سے بات ہوئی, شیوناتھ جھا صاحب سے, اور کہانی کار جو ہیں یعنی دوسرے اشفاق اللہ خان چھوٹے جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اشفاق صاحب السلام علیکم. اشفاق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟
جی آ رہی ہے.
اچھا اشفاق صاحب اگر آپ کے پاس ریڈیو یا آپ نے کھول رکھا ہے تو پلیز اس کو بند کر دیجیے گا کیونکہ کچھ آواز ہمیں اس کی بھی سنائی دے رہی ہے. تو اچھا چلیے ٹھیک ہے. تو جھا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ لوگ آپس میں بات کر سکتے ہیں, لیکن پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ ویسے میں نے ریکارڈ کیا تھا لیکن میں نے کہا براہ راست آپ سے لائیو شو میں پوچھوں گی کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو جن لوگوں نے قربانیاں دیں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ انگریز سرکار کے زمانے میں تو آپ کی جائیدادیں ضبط ہو گئیں, لیکن جب آزادی ملی پھر اس کے بعد کیا ہوا؟
آزادی کے بعد سب سے زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ پورے ملک کے جو آزادی کے بعد ہمارے نوجوان تھے, کرانتکاری تھے, ان کو سب سے زیادہ آزادی کے بعد ان کی آتماؤں کو روحوں کو تکلیف ہوگی کہ ہمارے جس لڑائی انہوں نے لڑی تھی پورے ملک کے لیے اس کا بٹوارا ہوا, سب سے بڑی یہ ہے. اور دوسرا اس کے بعد جو حالات ان کی جو خواہش تھی ان کے جو میسج تھے وہ نئی جنریشن تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں, جو آج 70-72 سال ہو گئے ہیں ہمارے ملک کی آزادی کو, کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے جان نثار ہوئے اس ملک پر, اور ان کی اپنی خواہش تھی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کس حوصلے کے ساتھ ہم جذبے کے ساتھ قربانی دیں.
تو ایسی ہی کچھ کہانی رام پرساد بسمل صاحب کے خاندان نے بھی سنائی ہے. اب میں یہاں پہ اشفاق صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی, لیکن میں آپ سے پوچھوں گی جہاں صاحب تھوڑی سی آپ بسمل صاحب کی زندگی کی کہانی سنائیں, کیونکہ جو ہم نے ریکارڈ جب کی تو ان کی آواز چونکہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا عمر کی بھی بات ہے اور تھوڑا سا لائنیں بھی دیہات میں رہتے ہیں وہ خراب تھیں, تو آپ ہمارے سننے والوں کو سنائیے ان کی زندگی کی کہانی اختصار کے ساتھ.
بسمل صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں اشفاق اللہ خان صاحب زیادہ بتا سکتے ہیں, لیکن جو دو ایک جو مہتوپورن بات یہ ہے بہت زیادہ امپورٹینٹ کہ ہم بسمل صاحب کو رام پرساد بسمل کو ہمیشہ میں شاہجہاں پور سے, میں نہیں پورے بھارت ورس کے لوگ شاہجہاں پور سے جوڑتے ہیں, لیکن رام پرساد بسمل کے پتا مرلی دھر یا ان کے پتا شاہجہاں پور سے پہلے کہاں تھے اس کا کسی نے ذکر نہیں کیا. ہم اتر پردیش کے شاہجہاں پور سے جوڑتے چلے آئے. جب میں اس کام کو جو میں پچھلے 12-15 سال سے کام کر رہا ہوں, اس کام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں رام پرساد بسمل کا جو پیدائشی تو ان کا شاہجہاں پور ہے, لیکن ان کا جو پیٹرنل گھر ہے وہ اتر پردیش میں نہیں ہو کر مدھیہ پردیش میں ہے, اور مدھیہ پردیش کے چمبل ریوائن میں. چمبل ریوائن ورچولی نون اور ان نون, اس کو فیمس اور انفیمس کہیے, وہ ڈکیت کے کارن ہے. اس میں آپ سب سے مہتوپورن ڈکیت کا نام جو نام ہے آج کی تاریخ میں وہ ہے پھولن دیوی. پھولن دیوی چمبل ریوائن میں ادھر رہتی تھی. چمبل ریوائن میں ہی رام پرساد بسمل کا آج بھی پیٹرنل جتنی فیملیز ہیں وہ وہاں رہتے ہیں. جب میں بجندر سنگھ کے پاس پہنچا, بجندر سنگھ کوک سنگھ صاحب کے ونسج ہیں, کوک سنگھ مرلی دھر صاحب کے چاچا ہیں, مطلب کوک سنگھ صاحب رام پرساد بسمل صاحب کے پریوار دادا ہوئے. تو رام پرساد بسمل کے پتا یا ان کے پتا وہاں سے مدھیہ پردیش سے مائگریٹ کر کے اتر پردیش چلے آئے, وہ شاہجہاں پور چلے آئے, لیکن ان کا جو پورا پیٹرنل فیملی ہے وہ چمبل کے ریوائن میں ہے. آپ کو بہت جان کے بہت زیادہ تکلیف ہوگی, اور امید کرتے ہیں کہ اگر اشفاق صاحب میری بات سن رہے ہوں گے تو اشفاق صاحب بھی اس چیز سے بہت ہمیں یا اس چیز کو مانیں گے کہ جب آزادی ملی ہے اس سمے بسمل صاحب کے جو یہ بنسج ہیں بجندر سنگھ صاحب کو تقریباً 70 بیگھا زمین بھارت سرکار یا وہاں کے جو شاسن کے لوگ تھے وہ انہیں دیے تھے. چونکہ بسمل کے فیملی میں یا جو بجندر سنگھ صاحب ہیں وہ ان پڑھ ہیں, ان پڑھ مطلب وہ پڑھے لکھے نہیں ہے, اس فیملی میں کوئی بھی ویکتی پڑھا لکھا نہیں ہے سوائے بسمل ایک لاسٹ پوائنٹ تھے جو پڑھے لکھے تھے.
तो पढ़े लिखे नहीं होने के कारण क्या हुआ कि उनके जितनी भी जमीन सरकार ने मुहैया कराए थे उन तमाम जमीनों पे वहाँ के मध्य प्रदेश के या चंबल के या मुरैना के जो पॉलिटिशियन है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो गूंस हैं, वो उस जमीन को किसी न किसी तरह से कब्जा करता चला गया। आपको ये भी जान के बहुत अफसोस होगा या पूरे मुल्क के लोगों के लिए ये अफसोस की बात है कि जहां रामप्रसाद बिस्मिल साहब का प्रतिमा लगाया गया है, एक स्टैचू लगाया गया, लाइफ साइज स्टैचू, वो जमीन बिजेंद्र सिंह साहब को दिया गया था और वहां का जो स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उस जमीन को उन्होंने मांगा था और ये बोला था कि ये जमीन आप दीजिए और इस जमीन के बदले में मैं आपको पैसा इजाफा कराऊंगा। लेकिन ना तो सरकार, ना तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ना तो और कोई भी लोग उस पैसे को वापस किए। रिजल्ट इसका ये हुआ कि बिजेंद्र सिंह के पास जो 70 बीघा जमीन था जो उन्हें रामप्रसाद बिस्मिल साहब के मार्टिरडम के कारण मिला या जो भी उस जमाने में जो भी उनको मिला वो जमीन खत्म हो गया।
मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगी आपको और कुछ नाम पढ़ना चाहती हूँ फेसबुक से जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त हमारा लाइव शो। साबिर नाज, मकसूद डार, हबीबुल्ला खान, बैतुल्ला वजीर, कासिम खान, मोहम्मद अली हालीपोटा, परवेज सुल्तान, पीर शाहिद ने कश्मीर से यानी भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से लिखा है कि हमने यौम आज़ादी एक यौम सिया के तौर पर मनाया है। राशिद अली रहमानी ने कहा है कि आज़ाद होकर भी, इन्होंने पाकिस्तान से ख़त लिखा है कि हम अब भी वडेरा शाही और जागीरदारी के ग़ुलाम हैं। तो जिन लोगों ने पैगाम लिखे हैं मैं और भी पढ़ती जाऊँगी, लेकिन झा साहब और अशफाक साहब मैं आपको थोड़ा सा ब्रजिंदर सिंह साहब की तो आवाज़ नहीं समझ आई थी लेकिन उनके बेटे ने कुछ थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की इसी बारे में बात की है जो अभी झा साहब कहते हैं, पहले हम वो सुनते हैं।
जो उनकी जमीन थी जो हमें मिली थी जमीन उनके बारे में जो उनकी जमीन थी वो दी गई थी हमें, तो उसमें ये हुआ कि उसमें लोग बागों ने ऐसे कर उसमें पट्टे दिलवा दी हमारी जगह में।
अच्छा,
जैसे रामप्रसाद बिस्मिल के नाम से हमें जगह मिली थी तो उसमें जो जैसे गांव के लोगों ने उसमें करकुरी किए 3-2-5 उसके जैसे पटवारी था उससे मिलजुल के उसमें पट्टे निकलवा दिए। कुछ वैसे गहली जगह और जैसे जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती हमारी।
तो मुकदमा चल रहा है उसका क्या?
मुकदमा क्या चलेगा जब सुनवाई नहीं है तो मुकदमा कहाँ से चलेगा, कोई सुनता ही नहीं है। जब कहो कोई किसी बात की तो सुनता ही नहीं है कोई।
और जमीन कितनी है?
इतना पैसा तो है नहीं कि किस लड़ गए।
सही, बिल्कुल सही है।
यहाँ स्थिति अपनी डाउन है।
क्या करते हैं, कितनी कमाई है आप लोगों की?
कमाई क्या है, वो किसानी का काम है। क्या कमाई है, किसानी का काम तो वो यार दाल रोटी अपनी खा रहे हैं बस। वही 4-5 बीघा खेत है उसमें 3 भाई है।
अच्छा, तो जो झा साहब आए तो उन्होंने क्या किया? शिवनाथ झा ने
जहाँ साहब आए थे वो ले गए थे, जैसे एक हमारी बहन थी शादी के लिए तो वो ले गए थे बम्बई। बम्बई किसी से मिलाया तो उन्होंने कुछ पैसे दिए थे जैसे उसकी शादी करने के लिए, उन्होंने पैसे दिलवाए कुछ।
अच्छा, बस इसके सिवाय कुछ नहीं हुआ?
इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। जैसे कई लोग नेता वगैरह आते हैं कोई सुनता ही नहीं है इस चीज की, तो जैसे बस जहाँ साहब ने सुनी थी और कोई नहीं सुन रहा है आजकल। ऐसे क्या करे, टूटा फूटा कोई व्यवस्था ही नहीं बन रही है। जैसे लोग बागों के लिए काफी आवास वगैरह निकल रहे हैं अपनी तो कोई सुना ही नहीं।
कितनी जमीन थी आपकी जिस पर कब्जा कर लिया पटवारी?
वो जमीन थी शायद कितनी थी, 33 बीघा जमीन थी।
33 बीघे? तो आपको, आपके तो परदादा थे वो, तो क्या याद है आपको उनके बारे में, पंडित जी के बारे में आपको क्या पता है?
नहीं, हमें तो नहीं पता। हम तो इन्हें मालूम है, हम तो बहुत छोटे थे। हमें तो जब होंगे नहीं, जब वो थे, जब हमारा जन्म कहाँ हुआ था।
नहीं नहीं, कहानी क्या सुनी आपने? आपको उनपे अभिमान है आपका, कुछ उनपे गुरूर है, नाज होता है उनपे?
तो लाजमी नहीं होगा, जब हमारे परिवार के हैं तो हमें तो बहुत कुछ होता है। सर पर उसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजी को कातिल में। ये हमारे जैसे ये किताब रखी है उनकी, ये पता रहते उन्हीं की लिखी हुई है, बहुत पुरानी किताब है और कोई नहीं है। जैसे किताब में ही है सब चीजें उनकी, तो गांव का नाम है बरवाई, ये अम्बा के पास पड़ता है, अम्बा से 8 किलोमीटर इधर है। जैसे मुरैना आओगे आप,
ठीक है,
मुरैना से आप फिर चलोगे अम्बा के लिए, अम्बा से फिर तुम 8 किलोमीटर अम्बा बाजार पड़ता है, बाजार से फिर आओगे तुम 8 किलोमीटर बरवाई, बरवाई जैसे तुम आओगे तो पहला पारे धोनी का मिलेगा, बिस्मिल जी का।
अच्छा।
पारे के बगल से रास्ता है हमारे घर के लिए,
तो
वो भी रास्ता ऐसी है टूटी फूटी, कोई नेता लोग कोई नहीं देखते हैं, इनके बिस्मिल के परिवार वाले इधर रहते हैं, तो खरंजा भी करवाना चाहिए, कोई रास्ता भी नहीं है बढ़िया अपनी तरफ तो, और काफी जगह खरंजा हो चुका है।
और घर कैसा है आपका?
घर तो देख लोगे आप, टूटा फूटा है।
उसमें कितने लोग रहते हैं परिवार में?
परिवार में हम 3 भाई हैं और माता है हमारी और पिताजी हैं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
तो सामीन, हमारे ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से पेश किया जा रहा है। फेसबुक पर कुछ पैगामात, अफरोज आलम, जाहिद रशीद, छोटू छोटू, रुखसाना हीर, वफा गुल, गुल हसन मुगैरी, अदनान मसूद, अनीस चौधरी, लायक शाह दावर, सरवर कुबवाली, चौधरी उल्फत, किफ़ायतुल्ला मेहरानजई, आसिम खान, शाहिद खान, आमिर किंग, औसान अहमद, नईम हसन चौधरी, मलिक कैसर अब्बास, गफूर गुजर, मुजीबुर रहमान, यूसुफ रईस, रबाब शेख, अब्दुल वली, खापुल राग, हबीबुल्ला और बदरुद्दीन बलो साहिबान, ये सब भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप में से जिन्होंने कमेंट्स किए, उनके लिए भी सब ने ज़्यादातर आप लोगों को खुश आमदेद कहा है और पसंद किया आपकी कहानियों को। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगी अशफाक साहब, क्योंकि आपसे हमने नहीं पूछा अब तक, क्योंकि ये तो बात हुई कि ज़मीन जब्त हो गई थी अंग्रेज़ के ज़माने में, फिर आपकी मकान जायदाद वगैरह आप लोगों को वापस मिल गई या नहीं मिली?
नहीं, ज़मीनें तो हम लोग को नहीं मिल पाई और मकान हम लोग का क्योंकि पुश्तैनी मकान वही था और तो वो मकान हम लोग के पास रहा।
अच्छा, तो कोई यानी ऐसे कोई वजीफे वगैरह नहीं है जो उन लोगों मिले जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और कुर्बानियाँ दी, जिनकी वजह से आज मुल्कों में लोग अपनी आज़ादी की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो कोई वजीफे किसी के लिए भी नहीं दिए गए?
वजीफे और लोगों को मिले होंगे, हमारे हमें याद है कि हमारे वाली साहब खुदा बख्शे थे और वाली साहब को हमारे शायद 100 रुपए पेंशन उस जमाने में दी गई थी, वो भी यहाँ के जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे उनकी तरफ से हुई होगी। तो 100 रुपए पेंशन जब 1-1.5 साल में लाते थे और हम लोग वाली साहब उसमें प्रोग्राम वहीं मजार शरीफ पे रखते थे और उसमें लगा देते थे, और उसके बाद जब वाली साहब का इंतकाल हुआ तो एक इंक्वायरी सेटअप हुई कि भाई वो पेंशन इनको दी जाए नहीं दी जाए। तो जब वो यहाँ के प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन था सिटी मजिस्ट्रेट उनके पास इंक्वायरी आई और उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बहुत छोटा था, 8 क्लास की बात है, वाली साहब का बिल्कुल जल्दी इंतकाल हुआ था, तो वो उन्होंने पूछा भाई आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं, क्योंकि शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से मिला हुआ हमारा गरीब खाना भी है और उसके सामने हमारी मार्केट भी है। तो मैंने उसमें जो भी जमीन थी और वो लिखा दी तो वो नहीं हो पाई, तो उस वक्त मैंने उनसे ये कहा था कि भाई ये फकीरी पेंशन है या ये फ्रीडम फाइटर फैमिली की पेंशन है, अगर वो पेंशन है तो दे दीजिए और अगर ये दूसरे मत की पेंशन है तो ना दीजिए। बहरहाल फिर वो वजीर आजम इंदिरा गांधी ने वो पेंशन फिर बाद में सम्मानित पेंशन कर दी गई थी, एज ए आपको टोकन दिया जाता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी हो, लेकिन ये फैमिली पेंशन फ्रीडम फाइटर पेंशन है। लेकिन हमारी वालिदा की पेंशन कभी, उसके बाद 81 में इंतकाल हुआ था वाली साहब का, उसके बाद कभी नहीं मिली।
अच्छा अच्छा, और हमारे कुछ फेसबुक पर लोग हैं, एजाज रात, तसव्वुर हुसैन मलिक, मलिक मुबीन खुर्रम, एक नाम बड़ा
करता हूँ जी,
उन सबकी तरफ से मैं वालेकुम सलाम कहती हूँ। एक बड़ा बामानी नाम है, गुमनाम सिपाही के नाम जो हम बात आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो गुमनाम नहीं है, खुशकिस्मती से उनके नाम हिस्ट्री में है, मौजूद तारीख में दर्ज हैं, आशिक हुसैन खासखेली, मुर्तुजा अजीज अंगरा, इन सब ने आप लोगों को खुश आमदीद कहा है और तारीफ की है आपकी कहानियों की। अब झा साहब आपसे बात मैं करूँगी कि आपने पूरी एक सर्च की है बहुत बड़ी इन लोगों के लिए,
अभी जो अशफाक साहब बता रहे थे
जी,
मैं उस पे बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं दो तीन बातें बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि अशफाक साहब इस चीज से हम मुझे बोलेंगे कि ये अच्छी बातें हैं। अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारा 47 के पहले में जितने भी रिवॉल्यूशनरीज और जितने भी क्रांतिकारी थे उन तमाम लोगों के बीच में जो एक लाइनअप था, एक जो कम्युनिकेशन का एक नेटवर्किंग था, वो नेटवर्किंग उस जमाने में जहां आज मोबाइल फोन नहीं है, आप अमेरिका में बैठी हुई है, मैं हिंदुस्तान में हूँ, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक आदमी उत्तर प्रदेश में हम लोग बात कर रहे हैं, उस जमाने में ये नेटवर्किंग नहीं था, फिर भी तमाम क्रांतिकारियों का आपस में इतना स्ट्रांग नेटवर्किंग था कि कोई भी चीज एक दूसरे से मिस नहीं होता था। 72 ईयर्स के बाद हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं और उनके आज के जो डिसेंडेंट्स, ब्लड लाइन्स और लाइनेजेस हैं, उनके बीच में एक सेलेक्टेड ही लोग एक दूसरे को जानते हैं, अदरवाइज कोई किसी को नहीं जानता है। इन्होंने अशफाक साहब ने जो कहा है, अशफाक साहब को मैं बताना चाहूंगा कि अशफाक साहब करीब करीब 37,600 से ज्यादा लोग फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी का जो पेंशन है वो एक ऑन रिकॉर्ड पे लेते हैं, लेकिन दूसरा रिकॉर्ड ये है कि भारतवर्ष में 170,365 लोग फ्रीडम फाइटर पेंशन लेते हैं।
अच्छा।
और इंदिरा जी के समय में जब 25th ईयर में इस चीज को इम्प्लीमेंट किया था, जब अशफाक साहब ने कहा कि 200 रुपये, वो 200 रुपये आज की तारीख में 30,000 रुपये पर मंथ है बिसाइड्स अदर फैसिलिटीज,
यानी उनको 30,000 रुपये मिलते हैं उन लोगों को
आज की तारीख में 30,000 रुपये पर मंथ।
अच्छा।
जो फ्रीडम फाइटर्स पेंशन के जो लोग हैं उनके वाइफ हो और 3 लड़कियों के लिए ये इफेक्टिव है।
अच्छा, अच्छा।
उस हिसाब से आज हर एक साल नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि हर एक महीने 665 करोड़ रुपया भारत सरकार फ्रीडम फाइटर्स पेंशन पे खर्च करती है। 665 को अगर मैं 12 महीने से गुना करता हूँ और उसको मैं 5 साल से गुना करता हूँ तो ये करीब करीब कितना पैसा जाएगा अरब और खरब में। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो रीइंबर्समेंट है, उसमें 30-35% लोग बेनाम है।
अच्छा, मैं यहाँ ये पूछूंगी आपसे कि ये 30,000 अगर मिलते हैं तो अभी जब हमारी बात हुई राम प्रसाद बिस्मिल साहब के खानदान से तो उन्होंने क्यों कहा कि हमें किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिलती?
नहीं नहीं, बिस्मिल साहब को मिलता होगा या नहीं मिलता होगा यही तो बता रहा हूँ मैं कि बिस्मिल साहब का नाम उस लिस्ट में है या नहीं है ये बिस्मिल साहब बताएंगे।
अच्छा।
लेकिन भारत सरकार के लिस्ट में 37,600 से ज्यादा लोगों का नाम है जिनको 30,000 पर मंथ के हिसाब से, चाहे वो INA के हो या फ्रीडम फाइटर्स पेंशनर्स में हो, ऑन एन एवरेज इतना पैसा मिलता है।
अच्छा।
लेकिन उसमें सेलेक्टिविटी है कि अब रामप्रसाद बिस्मिल के फैमिली को मिलता है या नहीं मिलता है वो चीज। मैं जो आपको बता दूं कि जब हम लोग काम कर रहे थे बिस्मिल फैमिली, जो जिस लड़की के बारे में उनका भाई ने बताया, उसका नाम है प्रियंका, हम लोग जब उसके घर में पहुंचे थे, मैं, वाइफ और मेरा बेटा आकाश, जिसको आप बार बार नाम लेती हैं, हम लोग जब उसके घर पहुंचे थे तो वहां पे मुरैना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच है जहां पे उसका अकाउंट खोलने के लिए, क्योंकि जो 2,00,000 रुपया मुझे उन्हें देना था वो 2,00,000 रुपया मैं कैश नहीं दे सकता था, जिन्होंने भी मदद किया था वो सुलभ के जो संस्थापक हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, उन्होंने जो दिया था तो वो चेक दिया था, वो चेक मुझे जमा करना था।
अच्छा।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच उनका अकाउंट नहीं खोल रहा था।
अच्छा।
लेकिन ये फॉर्चुनेट था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक जो बहुत बड़े अधिकारी थे उनके साथ हम लोग 1981 में हम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट पे पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे।
अच्छा।
वो एक सीनियर ऑफिसर थे, मैं जब उसे फोन किया कि यार तुम्हारा बैंक उसका अकाउंट नहीं खुल रहा है तो ये अकाउंट उनका आधा घंटे में खुला।
अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इसलिए रोक रही हूँ कि दो कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनके सवाल ले लेते हैं, कॉल्स डिस्कनेक्ट ना हो जाए। कसूर से हमारे साथ हैं अल्लाह देता साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह देता साहब।
वालेकुम सलाम सिस्टर, क्या हाल है आपके?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
जी शुक्र अल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि जो भारत से मुमान लिया है ना अपने लैंड से,
जी जी
भारत से,
जी
बहुत अच्छा किया आपने, भारत और पाकिस्तान के लोगों को ऐसे ही मेल जोल करवा दे। ये यूएस अमेरिका को ही सिला जाना चाहिए, जो कई भारत से मुमान ले लें, पाकिस्तान ले लें, इनकी बातचीत चल पड़े, तो क्रिकेट की राह निकालो।
अच्छा तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोस्ती होनी जरूरी है किसी भी जगह। लेकिन ये बताइए, कुछ पूछना चाहेंगे आप हमारे मेहमानों से इनकी कहानियों के हवाले से, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इनकी कहानियों की, तो कुछ पूछना है आपको?
चलो ठीक है, मैं इनकी कहानी सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है।
अच्छा भाई सुन लीजिए, आपकी कहानी को पसंद कर रहे हैं लद्दता साहब ने, और ये चाहते हैं कि दोस्ती और मोहब्बत रहे दोनों मुल्कों में, क्योंकि दोनों मुल्कों को ये भी तो याद रखना चाहिए कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं आपके, वो साझा है आपका उनमें, क्योंकि इन्होंने उस पूरी ज़मीन के लिए जद्दोजहद की इन लोगों ने ना, फिर उसके और टुकड़े हो गए और पाकिस्तान इंडिया तो खैर बने आज़ादी के बाद, लेकिन फिर आपको पता है कि बांग्लादेश जो है एक और तीसरा मुल्क उसमें से हुआ। तो हम एक और ले रहे हैं कॉलर को, खालिद उमर नियाजी साहब। जी खालिद उमर नियाजी साहब,
अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम सलाम नियाजी साहब।
हाँ जी खालिद उमर नियाजी, आप नाम बता दिया है तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़े पुरानी बातें कर रहे हैं और इन्होंने आजादी की जंग लड़ी है। बात ये इंडिया का तो मुझे नहीं पता, तो पाकिस्तान में कोई किधर किसी को सुलह तो नहीं मिला, ना कोई उनकी तनखेन है ना कोई वजीफा है जी, उनको पूछता ही कोई नहीं है। हाँ जब अंग्रेज बहादुर की वजह से ये जंग लड़े थे ना जी, जो क्या कहते हैं जंग अजीम, तो उन लोगों का अभी तक चलता रहा है, काम हो रहा है, उनको पेंशन मिलती थी। उससे पहले तो फौज पक्की थी नहीं, और ना पाकिस्तान में ना बांग्लादेश में, अब क्या देना है।
असल में अभी जैसे कि इन्होंने वजाहत की खालिद उमर नियाजी साहब, अभी हमारे जहाँ साहब ने बताया कि जो उस वक्त 100 रुपये था वो 30,000 हो गए हैं, तो इससे अंदाज़ा होता है कि एक बड़ी तादाद में लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन वही बात है कि इसमें जैसे अगर ऐसे प्रोमिनेंट नाम रह गए बिस्मिल साहब जैसे, तो ये उनसे पूछना पड़ेगा हमें कि उनको मिलता है या नहीं। लेकिन क्योंकि जब उनसे मुलाकात हुई झा साहब की, तो उनकी बेटी की शादी थी और वो उसकी शादी के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, जिसके लिए इन्होंने अभी इन्होंने किस्सा भी सुनाया कि किस तरह इन्होंने 2 लाख का बंदोबस्त किया। अच्छा उमर साहब हमारे साथ हैं फैसलाबाद से। जी उमर साहब, उमर साहब वालेकुम सलाम। उमर साहब
जी सलाम अलैकुम।
जी जी वालेकुम सलाम।
ये झा साहब ये बता रहे हैं कि 37,600 लोगों को ये वजीफा जो है इंडियन गवर्नमेंट पे करती है
जी।
अब इसमें अलमिये की एक बात है, मैं पाकिस्तान के हवाले से कहूँगा
जी,
कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के पोते हैं असलम जिन्ना
जी,
उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे ख्याल में 5,000 पर मंथ भी नहीं देती।
और असल उमर साहब अगर ऐसा है जी जी, आप प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं समझी आपने बात खत्म कर ली।
और वो जो कायद-ए-आज़म को जगह मिली थी लाहौर में शिमला पहाड़ी, वहाँ उनकी पोती के नाम जमीन थी, वो भी लोगों ने कब्जा कर लिया। अब ये कि जो लोग लड़े हैं तो उनको रिवार्ड कोई नहीं मिला।
असल में उनका सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो मैं ये समझती हूँ उमर साहब की ये था कि उनको एक मुल्क मिला, यही उनका मकसद था। और उन्होंने ना किसी, वो कहते हैं ना कि ना उन्हें शोहरत की तमन्ना थी ना किसी सिले की परवाह, वो तो एक मकसद की खातिर लड़ रहे थे। लेकिन ये बाद में जो रह जाते हैं ना लोग, ये उनका काम होता है कि अपने जो मुजाहिद होते हैं, अपने जो शहीद होते हैं, उनको सिला दें। तो मुझे क्योंकि इस बारे में तफसील नहीं मालूम है, आपने जो बात की है कायद आज़म के पोते की, तो मैं ज़रूर इसमें थोड़ी कोशिश करूँगी इस बारे में जानने की और फिर आपको बताती हूँ। अच्छा अब मैं जहाँ साहब आप मुझे बताइए, वैसे बता दूँ कि परवेज सुल्तान साहब और तौसीफ शौकी भी प्रोग्राम सुने, परवेज सुल्तान ने जो सवाल पूछा है वो वही है जिसका जवाब झा साहब ने दे दिया। उन्होंने हैरत का इजहार किया था कि इस ज़माने में 100 रुपये पेंशन, तो झा साहब ने वजाहत की है कि 30,000 रुपये। तो झा साहब मुझे ये बताइए कि आपने अब तक जितने भी काम किए हैं, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, ये जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इनमें सबसे
बड़े बड़े लोगों के बारे में नहीं बताऊँ, ये तो कुछ नाम है, कुछ ऐसे भी नाम है जैसे आपने पूरे काकोड़ी केस में सजेंद्रनाथ सन्याल का नाम ने आपने सुना होगा, अशफाक साहब ने बताया सजेंद्रनाथ सन्याल।
अच्छा जी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने मेरा सवाल नहीं सुना, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनमें सबसे दर्दनाक कहानी, ऐसे लोग जिनको हम जानते हैं, उसमें किसकी आपको लगी कि उनके वर्षा बहुत ही दर्दनाक हालत में है, बड़ी खराब हालत में?
मैं अभी तक जितने लोगों में मिला हूँ उसमें सबसे ज्यादा मुझे लगा था कि खुदीराम बोस, जिनको पिछले महीने में करीब 100 साल पहले 1908 में फांसी लगी थी, खुदीराम बोस उनके गुरु थे सत्येंद्रनाथ बोस वो मिदनापुर कलकत्ता वेस्ट बंगाल के थे, उस आज वेस्ट बंगाल हो गया, उस समय तो बंगाल ही था
जी।
उनका करीब करीब 85 साल का जो पोता है, अपना पोता पैरालिटिक है, उसी के लिए अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं आपको बताया कि मैं जो 72 ब्लड लाइन्स को ढूंढा, इन तमाम ब्लड लाइन्स को मिला के किताब कर रहा हूँ, इन कोमोमेडेशन ऑफ 100 ईयर्स ऑफ जालियांवाला बाग। इस किताब से हमारी कोशिश ये होगी कि मैं सत्येंद्रनाथ इनका बोस का जो पोता है, उम्मीद करते हैं कि हम पहुंचू नहीं पहुंचू, जिंदा रहेंगे मर जाएंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि उनके जिंदा रहते हुए मैं उनके घर पे पहुंचू और उनके जिंदगी की जो अंतिम सांस है उससे पहले मैं उनको मदद करूं।
बहुत आप बड़ा काम कर रहे हैं अशफाक साहब। कुछ आप मुझे बताइए कि आपके इल्म में और लोग हैं इस तरह के, जिस तरह से झा साहब काम कर रहे हैं, घरों में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो किसी और को आप जानते हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया?
नहीं, इस तरीके का काम नहीं है। झा साहब से काफी पहले से हम लोग की बातचीत बराबर होती रहती है और उनका ये जज्बा है, उसको सलाम करते हैं कि किस तरीके से वो ऐसी फैमिलीज को, मैंने बताया कि बहुत ही ऐसी फैमिलीज हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हैं और ये हालत बहुत से लोगों की है, और आज जो हम लोग भी इस काबिल हैं वो मेरे वालिद साहब की मेहनत है, जिसने उन्हें अपना मेहनत करके और बिजनेस को संभाला या जो भी बढ़ाया, वरना हालात बहुत खराब थे। मैंने बताया ना कि 100 रुपए पेंशन, और झा साहब ने जो जिक्र किया वो फ्रीडम फाइटर करीब करीब, चाहे NIA के रहे हो, वो अब करीब करीब इस दुनिया में नहीं है जिनको अच्छा। पेंशन मिल रही थी, और जिनको फ्रीडम फाइटर जो खुद थे उनकी वाइफ को तो पेंशन मिल रही है, लेकिन जो लोग शहीद हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं जिनको पेंशन के नाम पे आज भी कुछ नहीं है, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का घराना है और भी पंजाब के क्रांतिकारी हैं, तो ऐसे हालात से बहुत गुजर रहे हैं। और हम लोग के तो वालिद साहब को पेंशन मिलती थी, लेकिन वालिदा को उन्होंने पेंशन वो नहीं आज तक दी है, तो बहुत से सरकारी काम ऐसे ही हैं जो चल रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों की फाइनेंशियल पोजिशन के अलावा जो जज्बात इन क्रांतिकारियों के थे, जंगे आजादी के दीवानों के थे, उन्हीं के नाम पर कुछ ऐसे काम किए जाएं जो नई जनरेशन उनकी उस कुर्बानियों को पहचान सके।
जी हाँ, बिल्कुल। असल बात तो यही है। अच्छा, इस्माइल साहब, रजिया फारूक और शहजाद साहब और नसीर खान साहबान, इन सब, ये सब प्रोग्राम सुन रहे हैं और इनको बहुत पसंद आ रहा है कि बड़ा मालूमती प्रोग्राम है। तो आपने मुझसे अशफाक साहब वादा किया था कि आप अपने दादा के, बल्कि परदादा के कुछ अशार सुनाएंगे हमें और उनकी डायरी से कुछ पढ़ के सुनाएंगे, उन्होंने वालदा के लिए जो लिखा था, तो इस वक्त आपके सामने है कोई ऐसी चीज जो आप सुना सकें या नहीं है?
उनकी शायरी थी वही के तंग आकर हम भी उनके जुल्मों बेदाद से चल दिए, हुए हैदम जिंदाने फैजाबाद से, और उनका आखिरी शेर था कि कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो ये है रब दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। ये उनके बड़े मार्मिक कुछ अशार हैं जो उन्होंने उस वक्त लिखे थे। वालदा मरहूम को जो खत लिखा था वो तो आपने सुना ही दिया है, तो मैंने कहा था कि उन्होंने अपनी वालदा को जो खत लिखा है उसमें समझाने की और सब्र की बात की है कि किस तरीके से हम आप सबको अलविदा कह के जा रहे हैं, और समझाने की कोशिश की है कि हमें अल्लाह ताला ने आपकी गोद में दिया था और वो अपने पास इस मुल्क के लिए मांग रहा है, तो मैं जिसकी अमानत था उस अमानत में आपको खयानत नहीं करना चाहिए, आप एक पढ़ी लिखी माँ हैं और उसको सौंप देना चाहिए जिसके पास से मैं आया था, उसी के पास जा रहा हूँ।
तो आपने फिर उनका ये कलाम कहीं पब्लिश कराया, मतलब उनकी डायरी या कलाम कोई चीजें?
जी, उन पे कई किताबें आ चुकी हैं, और सबसे पहले जो हमारे जब अशफाकुल्ला खान साहब के बड़े भाई मरहूम रियासतुल्ला खान साहब थे, तो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी एक लेखक हुआ करते थे, वो यहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे राज्यसभा में, उन्होंने बहुत काम किया है, उसकी किताबें लिखी हैं उन्होंने, और वो हम अपने पास से किताबें प्रिंट कराते हैं। सुधीर विद्यार्थी जी हैं, वो भी काम करते हैं, झा साहब हैं जैसे, तो ये लोग काम करते हैं, तो हम लोग किताबें वो प्रिंट कराते हैं और बांटते रहते हैं। इत्तेफाक से अभी हमसे
پیشتر کچھ لوگ آئے تھے کہ کتاب وہ میرے پاس ختم ہو گئی ہے تو پھر میں پرنٹ کراتا ہوں پھر بانٹتا ہوں وہ, تو یہ کام میرا جاری ہے کہ ان کی خیالات کو بہت آگے تک قربانی کتب کو پہنچایا جائے.
تو ویسے جہاں صاحب کتنے آپ کے خیال میں یہ جو کریکولم ہے نصاب جو ہے اس میں ان لوگوں کی کہانیاں موجود ہیں اس وقت یا نہیں موجود؟
میں آپ سے سب سے پہلے یہ بولوں گا, میں اشفاق اللہ خان صاحب کو سب سے پہلے بہت زیادہ دھنیواد دوں گا کہ اب ابھی تک میں جتنے لوگوں کو ڈھونڈا ہوں 70-72 لوگوں کو, اس میں شاید ہی 5 یا 6 لوگ ایسے ہیں جو بہت بہتر ہندی بول سکتے ہیں یا بہت بہتر اردو بول سکتے ہیں یا بہت بہتر انگریزی بول سکتے ہیں. اس میں اشفاق اللہ خان صاحب کا یہ جو گرینڈ سن ہے ہی از ون آف دیم. ان کی بھاشا جتنی مضبوط ہے وہ شاید آج کی تاریخ میں آج کی جو پیڑھی ہے آج کا جو ونسج ہے ان کی کنہی کی بھاشا نہیں ہے. اور چونکہ ان لوگوں نے جو بلڈ لائن جو ڈسینڈنٹ جو لائنیجز ہیں ان لوگوں نے ایجوکیشن پہ کوئی زیادہ مہتو نہیں دیا, وہ لوگ پڑھے نہیں اینڈ دے بیکیم اے پیراسائٹ. ورچولی مجھے بولنا نہیں چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پیراسائٹ ہو گئے کہ اپنے جو ان کے فور فادرس تھے ان کے پینشن یا ان چیزوں پہ. اشفاق صاحب بڑھے ہیں کلکتہ کے جتنے بھی فریڈم فائٹرز رہے ہیں وہ آج اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں کہ انہیں اپنے فور فادرس پہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے انسٹیڈ آف کہ وہ ان کے پینشن کے لیے زیادہ نربھر رہے ہیں.
جی میں سمجھ گیا آپ کی بات, یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا حق یہ تھا کہ ان کی جذبے کو اور ان کی قربانی کو آگے بڑھایا جاتا, ان کے بارے میں بات کی جاتی لکھا جاتا, بجائے اس کے کہ صرف یعنی پینشن اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ ان کو دی جاتی ہے, لیکن اصل ان کا حق تب ادا ہوتا خاندان کی طرف سے کہ آپ ان کی عزت میں اضافہ کرتے.
بالکل ان کا جو فلسفی تھا ان کا جو وہ چیز تھا وہ ہم آگے لے جاتے ہیں.
جی بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا.
اشفاق اللہ خان صاحب نے بھی ہم سے آپ کو جو میں ویڈیو بھیجا ہوں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسکول کے کتابوں میں جب سوتنترتا یہ جو مارٹیئرز اور ریولیوشنریز ہیں ان کے بارے میں اگر بتانا ختم کر دیں گے بچے کو نہیں بتائیں گے تو کل ہو کے بچہ کس کو پہچانے گا, بھگت سنگھ کون تھے یا ان کی ماں کون تھا, اشفاق اللہ خان صاحب کون تھے ان کی ماں کون تھا, یا رام پرساد بسمل کون تھے وہ کون تھے, کوئی نہیں پہچانے گا. مجھے اس چیز کو رکھنا ہوگا بچا کے, یہ ہیومن ہیریٹیج ہے, ہم اس کا مارکیٹنگ نہیں کریں, ہم انہیں بیچے نہیں, ہم انہیں پرزرو کر کے رکھیں. ہماری کوشش بس یہی ہے, میں جو کام کر رہا ہوں اس کتاب سے ہم چاہتے ہیں کہ ہیومن ہیریٹیج کو میں پرزرو کر کے رکھوں تاکہ آج نہیں 50 سال بعد یا 100 سال کے بعد بھی ہم ان چیزوں کو ملک کو بتا سکیں کہ ہندوستان میں کوئی اشفاق اللہ خان صاحب کا آدمی تھا یا ہندوستان میں رام پرساد بسمل نام کا کوئی آدمی تھا.
Exactly. بہت
ہندوستان ہو جائے, ہندوستان ہو جائے, پاکستان ہو جائے, بنگلہ دیش ہو جائے یا اس کے کتنے بھی ٹکڑے ہو جائیں, لیکن انسانیت برقرار رہے, سبھی لوگوں کے بیچ میں آپسی تال میل رہے, سبھی لوگوں کا خون ایک ہی رنگ ہے.
بالکل بہت شکریہ آپ کا شیوناتھ جھا صاحب اور اشفاق اللہ خان صاحب, آپ لوگوں نے اپنی یادیں ہم سے شیئر کی, اور اسی طرح ہم برجندر سنگھ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں رام پرساد بسمل صاحب کے بارے میں بتایا انہوں نے اور ان کے بیٹے نے. اور شہناز عزیز کو انجم ہیرل گل کو اب اجازت دیجیے اور پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اسی نغمے سے, اسی نظم سے جس سے آغاز کیا تھا.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ہمارے دل میں ہے سر فروشی.
अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू में।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के फौजी अफसरान की तरबियत के लिए फंड्स की फराहमी से इनकार के बाद अब अमरीकी तरबियती इदारों में आइंदा तालीमी साल के लिए पाकिस्तानी फौज के अफसरान के लिए मुख्तस 66 नशस्तें खाली हैं। वाशिंगटन में कायम अमरीकी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी उन मुतअद्दिद तरबियती इदारों में से एक है जहां पाकिस्तान के फौजी अफसरान को तरबियत फराहम की जाती है और गुज़श्ता एक दहाई से यहां उनके लिए नशस्तें मुख्तस थीं। अमरीका में मुकीम बैनुल अक़वामी और दिफाई उमूर के माहिर आरिफ इंसार कहते हैं कि इस इकदाम से अमरीका की पाकिस्तान की जानिब मायूसी का पता चलता है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने कहा,
अमेरिकन गवर्नमेंट की फ्रस्ट्रेशन है, ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन अमेरिका पाकिस्तान से ज्यादा कोऑपरेशन चाहता है और उसकी डिटेल्स मीडिया में आती भी रहती हैं कि वो किस तरह की कोऑपरेशन चाहता है और बज़ाहिर वो फैसिलिटेशन पाकिस्तान कर भी रहा है, लेकिन ये है कि नंदलेस जो तनाव है रिलेशंस में वो इसका नतीजा हो सकता है कि उसकी कंटिन्यूएशन है कि अमेरिका भी एस्केलेट करता जा रहा है जो स्टेक्स हैं, मतलब जिसने आपने देखा कि जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी पहले शामिल किया गया, फिर उसके बाद अब IMF से रिलेटेड बयान आता है पोम्पियो के US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, अब ये एक और स्टेप है तो एक एस्केलेशन सी है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान में मौजूद सियासी और दिफाई उमूर के माहिर ब्रिगेडियर प्रोफेसर इसहाक खटक का कहना है कि अमरीका की जानिब से ये इकदाम गैर जरूरी है और कोशिश ये होगी कि इस सर्दमहरी को खत्म किया जाए, लेकिन साथ ही इस इकदाम का नुकसान जितना पाकिस्तान को होगा उतना ही अमरीका को भी होगा और इसकी वजह से पाकिस्तान को अब तरबियत के लिए चीन और रूस की तरफ देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा,
चूंकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग फैसिलिटी अमरीका थी, अभी हमें या तो पाकिस्तान को कोशिश ये करेंगे कि इसको रिवाइव कर लिया जाए, इसको सॉफ्टन किया जाए प्रेसिडेंट ट्रंप के इस स्टेप को, बिकॉज ये अननेसेसरली है, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर नेचुरली हमें और एवेन्यूज खोलने पड़ेंगे और दूसरे ममालिक के साथ, बिकॉज अमरीका सिर्फ ये कोर्सेज नहीं कराता, सारी दुनिया में ये कोर्सेज होते हैं, यूरोप में ये कोर्स होते हैं, ब्रिटिशर्स हमारे वहाँ भी स्टाफ कॉलेज होता है, रशिया में स्टाफ कॉलेज होता है, वहाँ करेंगे, फ्रांस जाना पड़ेगा, लेकिन सर्दमेरी बढ़ेगी।
पाकिस्तान और अमरीका के फौजी ताल्लुकात माजी में बेहतरीन रहे हैं, दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक दूसरे के इत्तेहादी रहे हैं, मगर अब अमरीका की जानिब से पहले पाकिस्तान की फौजी इमदाद और अब फौजी ट्रेनिंग में कटौती तज्जियाकारों के मुताबिक खित्ते के तवाजुन में मसाइल पैदा कर रही है। आरिफ अंसार कहते हैं कि आलमी ताकत का तवाजुन तब्दील हो रहा है।
अमरीका ने भी अपनी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इंडिया की तरफ कर दी है और पाकिस्तान ने भी अपनी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो है वो चाइना की तरफ कर चुका हुआ है, तो अब उस के जो पस मंजर में हम देखें तो वो उस एंगल से अब ये मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं आगे। ऑब्वियसली एज द बैलेंस, ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर इज शिफ्टिंग, ये ट्रांजिशन में हैं सब और उसमें ये एक्शन हो रहे हैं, सब ये कहते हैं कि वो दोनों ताल्लुकात अच्छे तरीके से चला सकते हैं या जिसे विन विन भी कहा जा सकता है, लेकिन जाहिरी बात है कि ये प्रैक्टिकली करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
पाकिस्तान में इस वक्त एक अबूरी हुकूमत है, मगर आम इंतखाबात के बाद अब नई हुकूमत की तश्कील जल्द ही अमल में आने वाली है। आरिफ अंसार कहते हैं कि आने वाली हुकूमत इमरान खान की क्यादत में आ रही है और वो एक आजादाना सोच के मालिक हैं। उन्होंने कहा,
अगर हम इमरान खान की पोजीशन को या माजी को देख के करें तो वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव नहीं खेलते, उनका स्पोर्ट्स का भी आपको बैकग्राउंड पता ही है, मेरा ख्याल है कि वो वहाँ पे इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाई जाएगी और वो हो सकता है कि इस तरह से रिफ्लेक्ट हो कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो मामलात हैं उस तरफ वो आगे बढ़े, ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान के खासतौर इकोनॉमिक एंगल से और उसके क्या नतीजे निकलते हैं, एक तो वो रेमिफिकेशन हो सकती है जो कि नज़र में आती है। इसके अलावा वो क्या करेंगे, वो मेरा ख्याल है कि अभी वो सप्लाई लाइन है अमेरिका की जो वहाँ से गुजरती है या नेटो की, वो एक मेरा ख्याल है एक्सट्रीम स्टेप होगा, लेकिन ये कि लेवरेजेस हैं जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अप्लाई करेगा मुस्तकबिल में।
امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نوارٹ کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام کی منسوخی کا تخمینہ 24,10,000 ڈالر ہے، جبکہ اس کے ساتھ مزید 2 پروگرام بھی متاثر ہوں گے۔ واضح رہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے فوجیوں کی یہ ٹریننگ جونیئر آفیسرز اور کیپٹن سے لے کر بریگیڈیئرز تک کو دی جاتی ہے، اور اس میں شامل کورسز میں ایویشن، فلائنگ اور جدید ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق کورسز بھی شامل ہیں۔ پاکستانی فوج اس قسم کی مزید ٹریننگز سعودی عرب، مشرق وسطی کے کچھ ممالک اور یہاں تک کہ چین کے ساتھ بھی کرتی ہے، جو 2 طرفہ ہوتی ہیں۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔